दिस इज़ विवेक कुमार हिंद, BA पार्ट 2, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। अब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इतिहास पेपर 4, इम्तियाज अहमद, अध्याय नंबर 1, इस्लाम का भारत से संपर्क। मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास की विशेषता यह थी कि इस काल में राजनीतिक सत्ता मुस्लिम शासक वर्ग के हाथ में रही। मुस्लिम शब्द इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के प्रति समर्पण। यह नाम उस धर्म को दिया गया जिसका प्रचार हजरत मोहम्मद द्वारा 7वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में अरब देश में किया गया। यह एक अत्यंत सरल और मानवतावादी धर्म था जो मक्का नगर के दलित एवं पीड़ित वर्गों में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। मक्का के शासक वर्ग ने इसके दमन के उपाय किए, अतः हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों को 622 ईस्वी में मदीना नगर में शरण लेनी पड़ी। यह घटना हिजरत कहलाती है और इसी वर्ष से इस्लामी पंचांग का आरंभ माना जाता है। मदीना पहुंचकर मुसलमानों का संघर्ष मक्का के कुरैश शासकों के साथ हुआ और धीरे धीरे मुसलमानों का आधिपत्य मक्का नगर पर एवं अन्य क्षेत्रों पर स्थापित हो गया। 630 ईस्वी के बाद मुसलमान अरबों का ही शासन अरब प्रायद्वीप में स्थापित हो गया। हजरत मोहम्मद के मार्गदर्शन में एक नई राजनीतिक व धार्मिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। जून 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के देहावसान के पश्चात उनके वरीय सहयोगी अबू बकर को मदीना में मुसलमानों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया। उन्हें खलीफा कहा गया है जिसका अर्थ है उत्तराधिकारी। सिद्धांततः खलीफा को हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी के स्वरूप मुसलमानों ने अपना नेता स्वीकार किया था। आरंभ में खलीफा का पद निर्वाचित पद रहा, परंतु बाद में यह वंशानुगत हो गया जब 622 ईस्वी में उमैया वंश की स्थापना हुई। विभिन्न खलीफाओं के शासनकाल में इस्लाम धर्म और अरब साम्राज्य का प्रसार समीपवर्ती क्षेत्रों में हुआ। हजरत मोहम्मद के देहावसान के एक शताब्दी के भीतर अरबों का साम्राज्य पश्चिम में स्पेन से पूर्व में सिंध और मुल्तान तक विस्तृत हो चुका था। सिंध में अरब शासन की स्थापना 712 से 714 ईस्वी में हुई। यह इस्लाम की प्रथम शताब्दी का काल था और उमैया वंश के अधीन इस्लामी साम्राज्य का विस्तार प्रभावशाली ढंग से हो रहा था। कुछ इतिहासकारों ने सिंध में अरबों के प्रवेश को इसी साम्राज्यवादी विस्तार की प्रक्रिया का परिणाम माना है, जबकि कुछ अन्य ने इसे अरब व्यापारियों और इस क्षेत्र के समुद्री डाकुओं के बीच संघर्ष का परिणाम कहा है। पहले मत के समर्थन में ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म की संस्थापना से अरबों में एक नया धार्मिक उन्माद जगा और धर्म प्रचार की भावना से उन्होंने पड़ोसी क्षेत्र में अपनी सत्ता का विस्तार किया। एक विचार यह भी है कि अरब कबालियों की योद्धा प्रवृत्ति को गृह युद्ध से हटाकर पड़ोसी राज्यों की विजय की ओर आकर्षित किया गया। अरबों द्वारा किए गए आरंभिक अभियानों के संदर्भ में साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य निर्णायक माना जा सकता है। पवित्र खलीफाओं के समय में ही 7वीं शताब्दी के मध्य में अरब सेनाओं ने सिंध में प्रवेश करने का प्रयास किया। प्रथम महत्वपूर्ण अभियान 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में हुआ। अरबों ने समुद्र मार्ग से मकरान के तट पर आक्रमण किया, मगर वे असफल रहे। पुनः 647 ईस्वी में खलीफा उस्मान के समय में अरबों का आक्रमण हुआ, परंतु अरबों ने अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के प्रयास नहीं किए। कहा जाता है कि अरब सेनानायक ने खलीफा को सूचना भेजी कि इस क्षेत्र की विजय के लिए यदि कोई छोटी सेना भेजी जाएगी तो वह असफल होगी, और यदि कोई बड़ी सेना भेजी जाएगी तो वह रसद और पानी के अभाव में नष्ट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र को जीतने में जितने धन का व्यय होगा इसकी तुलना में यहाँ से आर्थिक लाभ नगण्य होगा। इस हतोत्साही सूचना के पश्चात अरबों ने इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार का विचार त्याग दिया। साम्राज्य विस्तार का पुनः प्रयास। उमैया वंश के शासकों द्वारा साम्राज्य विस्तार का प्रयास पुनः आरंभ हुआ। खलीफा वलीद का शासनकाल 705 से 715 इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसके अधीन इराक प्रांत के शासक हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी ने मध्य एशिया और भारत में साम्राज्य विस्तार के उपाय किए। जिस समय सिंध में मोहम्मद इब्ने कासिम के अभियान हुए, ठीक उसी समय एक अन्य अरब सेनानायक कुतैबा द्वारा मध्य एशिया में अरब सत्ता का विस्तार किया जा रहा था। सिंध पर अरब आक्रमण के कारण। सिंध में अरब आक्रमण का एक अन्य कारण अरब व्यापारियों और समुद्री डाकुओं के संघर्ष को भी कहा जाता है। भारत के साथ अरबों का व्यापारिक संपर्क बहुत पुराना था। चीन से लेकर यूरोप तक होने वाले व्यापार में अरब व्यापारी सक्रिय थे। इस क्रम में वे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगरों से भी व्यापार करते थे। आधुनिक श्रीलंका, जिसे अरब सिरंदीप सिंघल द्वीप कहते थे, भी इस व्यापार में शामिल था। भारत के तटवर्ती नगरों और श्रीलंका में अरब व्यापारियों ने अस्थायी निवास भी बना लिए थे, परंतु इन व्यापारियों को समुद्री डाकुओं की गतिविधियों के कारण बराबर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और इसकी शिकायत उनके द्वारा इराक के शासक हज्जाज से की जा रही थी। 711 ईस्वी के आसपास अरबों ने सिंध विजय का फैसला किया। इसका कारण समुद्री डाकुओं की समस्या ही थी। सेरंदीप में बसे कुछ अरब व्यापारियों के परिवार थे, उनमें कुछ सदस्य समुद्री दुर्घटना में मारे गए। उनके आश्रित महिलाएं और बच्चे सेरंदीप में रह गए, अतः वहां के शासक ने उन्हें हज्जाज के पास सुरक्षित भेजने का फैसला किया। इन यात्रियों के साथ कुछ भेंट उपहार भी हज्जाज के लिए भेजा गया। इराक जाते हुए जहाज़ों पर सिंधु नदी के मुहाने के समीप समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। यात्री बंदी बना लिए गए और सामान लूट लिया गया। हज्जाज ने इस घटना से क्रुद्ध होकर सिंध के शासक राजा दाहिर से विरोध प्रकट किया। उसने मांग की कि सभी यात्री सम्मानपूर्वक मुक्त किए जाएं और लूटे गए सामान की क्षतिपूर्ति की जाए, साथ ही यह आश्वासन दिया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। दाहिर ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, अतः हज्जाज ने स्वयं इस क्षेत्र में अरबों की सुरक्षा के उपाय आरंभ किए। हज्जाज द्वारा सैनिक कार्यवाही की शुरुआत। हज्जाज द्वारा सैनिक कार्यवाही आरंभ की गई। उबैदुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में प्रथम दो अभियान सफल नहीं हुए, परंतु मोहम्मद बिन कासिम ने निर्णायक अभियान किया। समुद्र मार्ग से बढ़ते हुए उसने देवल के बंदरगाह पर अधिकार किया। उस समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु मात्र 17 वर्ष की थी, परंतु वह एक साहसी व्यक्ति, योग्य सेनानायक और कुशल प्रशासक था। देवल पर उसकी विजय आसानी से प्राप्त हुई। यहाँ उसने विरोधियों का दमन करने के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन करने वालों को मृत्युदंड दिया, परंतु सहयोग करने वाली प्रजा को सुरक्षा हेतु वहां एक शक्तिशाली सेना छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम ने नीरून के नगर की विजय के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। नीरून की प्रजा ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि वहां के शासक पहले ही नगर छोड़कर पलायन कर गया। इसी प्रकार सहवान में भी किसी संघर्ष बिना मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा। अगले नगर सिसम पर अधिकार करने के लिए अरब सेना को स्थानीय जाटों के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ा, किंतु विजय उन्हीं को प्राप्त हुई। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु नदी को पार कर राजा दाहिर पर प्रहार करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसने नौकाएं प्राप्त की और नदी को पार कर राबर की ओर बढ़ा। दाहिर ने उसका मुकाबला किया, परंतु युद्ध में मारा गया और राबर का दुर्ग अरबों के अधिकार में आ गया। अगला आक्रमण ब्रह्मनाबाद पर हुआ, जो दाहिर की राजधानी थी। दाहिर के पुत्र जयसिंह ने नगर छोड़कर पलायन कर दिया। कुछ संघर्ष के बाद यह नगर भी अरबों के अधिकार में आ गया। फिर भी कुछ नगरों में दाहिर की सेना सुरक्षित थी, अतः बचे हुए विरोध को शांत करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने आरोर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। सिंध पर वस्तुतः पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद उसने मुल्तान के दुर्ग को भी जीत लिया। लगभग 2-3 वर्षों में ही मोहम्मद बिन कासिम ने समस्त सिंध और मुल्तान को जीतकर अरब शासन की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में कर दी। मुल्तान में उसने अमीर दाऊद नसर को शासक बनाया। मोहम्मद बिन कासिम की वापसी। 715 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद सुलेमान ने खलीफा का पद ग्रहण किया। वह हज्जाज और उसके संबंधियों का शत्रु था, अतः उसने मोहम्मद बिन कासिम को पदच्युत कर वापस बुला लिया। रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। उस योग्य सेनापति के अभाव में अरब अपनी सत्ता सिंध और मुल्तान से आगे विस्तृत करने में असमर्थ रहे। अरबों की आपसी कलह और भारत के अन्य राज्यों, विशेषकर प्रतिहार राज्य की सशक्त अवस्था ने अरब सत्ता के विस्तार के क्रम को अवरुद्ध कर दिया। अरब विजय के वास्तविक कारण। सिंध में अरबों की विजय का कारण जहां एक ओर उनके सैन्य बल में निहित था, वहीं दूसरी ओर इसमें राजा दाहिर के शासन की दुर्बलताओं का भी योगदान था। दाहिर के पिता राजा चर्च ने सिंध के सिंहासन पर अवैध ढंग से अधिकार किया था। इस कारण दाहिर के वंश को लोकप्रियता प्राप्त नहीं थी। दाहिर स्वयं ब्राह्मण था। उसने अपने राज्य में सभी बड़े पद ब्राह्मणों को दे रखे थे। उन्हें अनेक सुविधाएं और विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, जबकि बौद्ध धर्मावलंबियों और निम्न जाति के हिंदुओं, मेड़ों और जाटों पर अत्याचार किया जाता था। दाहिर का व्यक्तिगत चरित्र भी अच्छा नहीं था और उसके अनैतिक आचरण से भी असंतोष की भावना बनी हुई थी। इन सभी असंतुष्ट लोगों ने अरब सेना के साथ दाहिर के विरुद्ध सहयोग किया। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सहयोग करने वालों के प्रति उदारता के प्रदर्शन से भी अरबों को लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त अरबों की शक्तिशाली सेना और उत्तम युद्ध नीति तथा हज्जाज द्वारा प्रदत्त सहायता ने भी सिंध विजय के काम को आसान कर दिया। दाहिर की स्थिति इसलिए भी कमजोर पड़ी क्योंकि उसे अन्य भारतीय शासकों ने भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। कासिम का शासन प्रबंध। विजित क्षेत्रों का शासन प्रबंध संगठित करने में मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी प्रतिभा का उत्तम परिचय दिया। 713 से 715 ईस्वी के बीच 2 वर्षों में यह प्रबंध विकसित हुआ। इस्लामी सिद्धांतों और भारतीय परिस्थितियों के बीच समन्वय का यह एक सफल प्रयोग था। नगरीय क्षेत्रों में अरब शासकों ने एक नई व्यवस्था विकसित की जिसमें प्रशासनिक सत्ता प्रत्यक्ष रूप से उनके हाथों में केंद्रित थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने स्थानीय भूमिपति वर्ग के सहयोग से प्रशासन चलाने की व्यवस्था की। इसीलिए जहां नगरीय प्रशासन का रूप बदला, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों और भीतरी भागों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। अरबों की प्रशासनिक नीति उदार थी। अधिकतर क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण युद्ध और हिंसा के बदले समझौते और शांतिपूर्ण समर्पण के माध्यम से हुआ। एक अनुमान के अनुसार लगभग 65% क्षेत्रों में अरब शासन स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के पश्चात स्थापित हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने स्थानीय ब्राह्मण अधिकारियों की स्थिति भी पूर्ववत बनी रहने दी और उनकी सहायता से प्रशासन को सुसंगठित किया। उसने न केवल उनके विशेषाधिकार सुरक्षित रखे बल्कि उन्हें अपनी और से भी सुविधाएं प्रदान की। सामान्य प्रजा को कहीं कहीं सुविधाएं दी गई। ब्राह्मणाबाद के नगर में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने प्रत्येक परिवार को पुनर्वास के लिए चांदी के 12 दिरहम अनुदान स्वरूप दिए। कुल मिलाकर 10,000 परिवार लाभान्वित हुए। कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। मोहम्मद बिन कासिम ने कर प्रणाली में संशोधन किए। उसने भूमि कर खराज की दर 1/5 से 2/5 तक निर्धारित की। युद्ध में प्राप्त शत्रु संपत्ति जिसे गनीमा कहा जाता था का 1/5 खग्स के रूप में खलीफा को अर्पित किया जाता था। शेष 4/5 सैनिकों के मध्य बांटने का प्रबंध था। व्यापार और शिल्प पर चुंगी के माध्यम से भी राज्य की आय में वृद्धि की गई। गैर मुस्लिम प्रजा को जजिया कर भी देना पड़ता था। ऐसे लोग जिम्मी सुरक्षित प्रजा कहे जाते थे। अरब शासकों ने इन्हें जीवन, संपत्ति और धर्म की सुरक्षा का आश्वासन दिया और इन्हें सैनिक सेवा से मुक्त रखा, जो कि मुसलमानों के लिए अनिवार्य थी। इन सब के बदले में उन्हें जजिया कर देना था। इसकी दर धनी, मध्यम वर्गीय और निर्धन लोगों के लिए क्रमशः 48, 24 और 12 दिरहम वार्षिक थी। यह कर केवल वयस्क पुरुषों को देना पड़ता था जो सैनिक सेवा में सक्षम हों। बच्चे, स्त्रियां, वृद्ध, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपंग लोग इससे मुक्त थे। भिखारी और दरिद्र भी इससे मुक्त थे। ब्राह्मणों को भी सुविधा देने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें इस कर से मुक्त कर दिया था। इतना ही नहीं, शेष हिंदू प्रजा से जजिया कर वसूलने का काम भी ब्राह्मणों के ही हाथ में था। मोहम्मद बिन कासिम ने सुरक्षित प्रजा के साथ किए गए सभी समझौतों और उन्हें दिए गए सभी आश्वासनों का पूर्ण सम्मान किया और समकालीन स्रोतों से प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर उसका शासन प्रबंध दाहिर की अत्याचारी व्यवस्था से उदार था। यही कारण है कि इस काल में अरब शासन के विरोध की कोई चर्चा नहीं मिलती है। कासिम के बाद की स्थिति। सिंध में अरब शासन का क्षेत्र सीमित ही रहा। मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात इस क्षेत्र में अरबों का कोई योग्य सेनापति नहीं रहा जो अरब शासन का विस्तार करने में सक्षम होता। केंद्र में भी अरब शासक वर्ग आंतरिक कलह से पीड़ित था, जिससे कि साम्राज्य विस्तार का काम अवरुद्ध हो रहा था। दूसरी ओर पश्चिम और मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार शासकों की शक्ति भी सुदृढ़ थी और उन्होंने अरबों द्वारा विस्तार के प्रयासों को विफल बनाए रखा। अरब शासन का क्षेत्र भी सीमित रहा और अवधि भी। नवी शताब्दी के मध्य तक 854 एडी तक में सिंध के शासकों ने खलीफा के नियंत्रण से अपने आप को मुक्त कर लिया। 977 एडी तक इस क्षेत्र पर इस्माइली मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। अरब शासन का मूल्यांकन। इतिहासकारों ने सिंध में अरब शासन का महत्व आंकने में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। आरंभिक विचार यह रहा कि सिंध में अरब शासन एक परिणाम विहीन घटना थी। ऐसा संभवतः इसलिए कहा गया कि राजनीतिक क्षेत्र में अरबों के शासन से कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आ सका। नवीन विचारधारा के अनुसार सिंध में अरब शासन के महत्वपूर्ण परिणाम प्रकट हुए और इनका प्रदर्शन और राजनीतिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप में हुआ। विजित क्षेत्रों में अरबों ने कुछ नए राज्य संगठित किए जिनमें मंसूरा, आधुनिक कराची, महफूजा, आधुनिक हैदराबाद, सिंध और मुल्तान प्रमुख थे। कालांतर में मंसूरा और महफूजा के राज्य एक हो गए और सिंध व मुल्तान अरब शासन के दो केंद्र बन गए। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य राज्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भारत का राजनीतिक जीवन पूर्ववत ही बना रहा। सिंध में अरबों द्वारा स्थापित शासन प्रणाली का प्रभाव आगे चलकर तुर्क अफगान शासकों की कुछ प्रशासनिक नीतियों पर देखा जा सकता है, जैसे स्थानीय प्रजा के महत्वपूर्ण वर्गों के सहयोग की प्राप्ति, नगरीय क्षेत्रों से प्रशासनिक नियंत्रण, गैर मुस्लिम प्रजा की स्थिति निर्धारित करने के नियम आदि। अतः परोक्ष ढंग से अरबों की शासन व्यवस्था के प्रशासनिक परिणाम महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। आर्थिक और सामाजिक जीवन को अरबों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। उन्होंने सिंध में कृषि उत्पादन और व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। मरुभूमि क्षेत्र में कृषि का विकास करने और खजूर की खेती को बढ़ावा देने में अरबों का योगदान निर्णायक रहा। ऊँट पालन में उन्होंने उन्नत तरीके प्रचलित किए और अच्छी नस्ल के ऊँट स्थानीय तौर पर उपलब्ध होने लगे। चर्म शिल्प में उन्होंने प्रगति लाई। नरम और चिकने चमड़े का उत्पादन होने लगा और इससे बने चमड़े के सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बिकने लगे। सिंध क्षेत्र पर अधिकार होने के पश्चात अरबों का भारतीय नगरों से व्यापार और भी संपन्न हुआ। अरब व्यापारियों की बस्तियां पूर्वी तट पर भी स्थापित हुई और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ उनका व्यापार अधिक संपन्न हुआ। चीन के साथ भी समुद्र मार्ग से व्यापार की उन्नति हुई। नगरीय जीवन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन लाइफ। अरबों ने नगरीय जीवन को विकसित आधार दिया। व्यापारियों की सुविधा के लिए उन्होंने कारवां सराय आदि का निर्माण कराया, मस्जिदें बनवाई, व्यापार और वाणिज्य से संबद्ध यातायात सुविधाएं विकसित की। धीरे धीरे इस क्षेत्र के व्यापार पर बौद्ध व्यापारियों का नियंत्रण समाप्त हो गया और अरब व्यापारियों का अधिकार स्थापित हो गया। ग्रामीण जीवन पर अरब शासन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सामाजिक जीवन पर प्रभाव। सामाजिक जीवन पर भी अरब शासन का प्रभाव पड़ा। अरबों ने स्थानीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अरबी भाषा का प्रचलन हुआ। संस्कृत के अतिरिक्त स्थानीय भाषा में अरबों ने अभिरुचि ली। 886 ईस्वी में पहली बार सिंधी भाषा में कुरान का अनुवाद हुआ। धीरे धीरे धर्म परिवर्तन के माध्यम से इस्लाम का प्रचार हुआ। स्मरणीय है कि इस्लाम का प्रसार एकाएक नहीं हुआ बल्कि एक लंबे समय में धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इसका प्रभाव नगरीय क्षेत्रों में अधिक हुआ जहां बौद्ध धर्मावलंबी अधिक संख्या में थे। कालांतर में बौद्ध धर्म सिंध में वस्तुतः लुप्त हो गया। हिंदू धर्म का अस्तित्व ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहा। अरबों ने स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाया और इस तरह सामाजिक जीवन में समन्वय आरंभ हुआ। अरबों के साथ संबंध। सिंध में अरब शासनकाल में अरबों के साथ भारतीयों का संपर्क बना जो आगे भी बना रहा। अरब व्यापारियों की गतिविधि अब और विस्तृत हुई। अरब यात्री भी इस काल में भारत आते रहे। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान भारत आया। उसने प्रतिहार और पाल साम्राज्य के संबंध में लिखा है। पाल शासक देवपाल की शक्ति और महिमा का उल्लेख करता है। 10वीं शताब्दी में एक अन्य अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। उसने प्रतिहारों की शक्ति और उनके साम्राज्य की विशालता का वर्णन किया है। उसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय द्वारा कन्नौज पर चढ़ाई और प्रतिहारों की पराजय की भी चर्चा की है। भारत से भी दूत और विद्वान अब्बासी खलीफाओं के दरबार में जाते रहे। इस पारस्परिक संपर्क ने बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान दिया और इसका क्रम सिंध में अरब शासन की समाप्ति के बाद भी बना रहा। सांस्कृतिक समन्वय। सबसे निर्णायक परिणाम सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्पन्न हुए। अरबों ने भारतीय दर्शन, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र आदि के क्षेत्रों से बहुत कुछ ग्रहण किया। ब्रह्मगुप्त की रचनाएं पंच सिद्धांतिका और खांड्य खांडिका का अरबी भाषा ने अलफ जारी द्वारा अनुवाद हुआ। पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद कलीला व दीमबुना शीर्षक से हुआ। आर्यभट्ट की रचना सूर्य सिद्धांत का भी अनुवाद हुआ। इन गतिविधियों में अब्बासी वंश के खलीफाओं मंसूर 753 से 774 ईस्वी और हारून अल रसीद 786 से 809 ईस्वी ने विशेष अभिरुचि ली। इन्होंने भारतीय विद्वानों और चिकित्सकों को अपने दरबार में आश्रय दिया। अब्बासी काल के बरमकी वजीरों ने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अभिरुचि दिखाई और भारतीय विद्वानों का सम्मान दिया। ऐसे अनेक विद्वान अब्बासी राज्य की अनुवादशाला में नियुक्त किए गए। सिंधी मुसलमानों ने इस्लाम धर्म से संबंधित फिकह और हदीस के अध्ययन में भी योगदान दिया। भारतीय वेदांत दर्शन से सूफी मत का विकास प्रभावित हुआ। दूसरी ओर अरबों ने सिंधी भाषा का विकास किया और इसकी लिपि निर्धारित की। अरबों के आगमन से इस्लामी संस्कृति और हिंदू संस्कृति में एक प्रत्यक्ष संपर्क बना। यद्यपि इसके प्रभाव बहुत सीमित ही रहे, फिर भी इनसे एक नई समन्वित सांस्कृतिक परंपरा की नींव पड़ी। कालांतर में इसी संपर्क को तुर्क शासनकाल में और विकसित आधार प्रदान प्राप्त हुआ। तटवर्ती क्रियाकलाप। गुप्तोत्तर काल में भारत के समुद्री व्यापार और तटवर्ती क्रियाकलापों में कमी आई। रोमन साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत के यूरोपीय व्यापार का ह्रास हुआ। नवीं शताब्दी के बाद इस क्षेत्र में अरब व्यापारियों के प्रभाव में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे चीनियों ने भी इस व्यापार में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाना आरंभ कर दिया था। फिर भी कुछ भारतीय शासकों ने इस काल में समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन दिया। 10वीं शताब्दी के बाद गुजरात में चालुक्यों का शासन स्थापित होने पर उनके द्वारा समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इसके पूर्व प्रतिहार शासकों ने भी इस कार्य में अभिरुचि ली थी। पूर्वी भारत में बंगाल के पाल शासकों ने भी चीन और अरब साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्क बनाए रखा। दक्षिण भारत में पहले पल्लव और उसके बाद चोल शासकों ने समुद्री क्रियाकलापों को विशेष प्रोत्साहन दिया। पश्चिमी सागर तट पर देवल, थाना, खम्बात, भड़ोच आदि प्रमुख बंदरगाह थे। बंगाल में ताम्रलिप्ति और सप्तग्राम तथा कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम, कोरकई, सालियूर और कावेरीपट्टनम एवं पुहर मुख्य बंदरगाह थे। भारत का व्यापार फारस की खाड़ी के क्षेत्र से चीन के तट तक होता था। व्यापार से लाभ पहले की तुलना में कम हो गया था क्योंकि भारतीय व्यापारियों को अनेक नए प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी गुजरात, दक्षिण और बंगाल में भी व्यापार से धन लाभ हो रहा था। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भारत का सामाजिक जीवन। प्राचीन काल की भांति सामाजिक जीवन का आधार जाति प्रथा ही रहा, यद्यपि इसका स्वरूप अधिक जटिल हो गया। उपजातियों की संख्या में वृद्धि हुई जिससे समाज में विश्रृंखलता फ्रेगमेंटेशन बढ़ी। समकालीन अरब यात्री, मध्य एशियाई विद्वान अलबरूनी और कश्मीर का इतिहासकार कलहन सभी जाति प्रथा के संबंध में जानकारी देते हैं। चार प्रमुख जातियों के अतिरिक्त अलबरूनी एक अन्य वर्ग का वर्णन करता है जिन्हें वह अंत्यज कहता है और जो उसके शब्दों में किसी जाति में नहीं गिने जाते हैं। उन्हें नगरों और गांवों से बाहर रहना पड़ता था। केवल निर्धारित समय पर ही वे नगर या गांव में प्रवेश कर सकते थे और वह भी केवल सफाई का काम करने के लिए। कलहन 64 उपजातियों का उल्लेख करता है। समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोपरि थी। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रधान रहे बल्कि सामंतवाद के अंतर्गत धार्मिक अनुदानों के माध्यम से भूमिपति वर्ग के रूप में भी उभरे। अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए इन्होंने अन्य वर्गों से अपने आप को और भी पृथक रखना चाहा। अतः अब शूद्र की छाया भी ब्राह्मण के लिए अपवित्र समझी जाने लगी। विदेशियों को मलेच्छ कहकर उनसे भी संपर्क न रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाने लगा। इस प्रकार विदेशों में आने वाले परिवर्तनों से या वहां होने वाली प्रगति से भारतीय उपमहाद्वीप को अनभिज्ञ रखने की प्रवृत्ति बनी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी वास्तविक विकास का क्रम अवरुद्ध हुआ और भारत में यथास्थिति को बनाए रखना बल्कि इसे और जटिल एवं कठोर रूप देना ब्राह्मणों का प्रयास रहा। परंतु इसे विकास का क्रम अवरुद्ध हुआ और मध्य एशियाई समाज की तुलना में भारतीय समाज पिछड़ गया। इसके हानिकारक परिणाम तुर्कों के सैनिक अभियानों के क्रम में अस्पष्ट हो गए। जब भारतीय शासक वर्ग अपनी अंतर्निहित दुर्बलता के कारण आत्मरक्षा में असमर्थ सिद्ध हुआ, क्षत्रियों और वैश्यों की स्थिति कुछ अर्थों में एक जैसी थी। जाति प्रथा के नियमों का भी एक उस जटिल ढंग से पालन नहीं करते थे जो ब्राह्मणों की विशेषता थी। परंतु सामंती समाज में योद्धा वर्ग होने के नाते क्षत्रियों की स्थिति स्वाभाविक रूप से बेहतर थी, जबकि व्यापार वाणिज्य के पतन से वैश्यों की स्थिति प्रभावित हुई थी। धार्मिक क्षेत्र में क्षत्रिय वेदों का अध्ययन तो कर सकते थे मगर उसकी शिक्षा अन्य किसी को नहीं दे सकते थे, जबकि वैश्यों को वेद अध्ययन की अनुमति भी नहीं थी। राजपूत शासक वर्ग जाति प्रथा में लीन होने के बावजूद अपने जनजातीय अतीत से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ था। राजपूतों में अपने कबीले के प्रति निष्ठा और प्रेम की भावना बहुत प्रबल थी, परंतु अन्य वर्गों के प्रति उनका व्यवहार भी अलगाववादी था। अतः समाज के बहुसंख्यक वर्ग से राजपूत शासक वर्ग के संबंध बहुत गहरे नहीं थे। यही कारण था कि राजपूत सत्ता का अंत और तुर्की सत्ता की स्थापना का समाज के सामान्य वर्ग द्वारा कोई विरोध नहीं हुआ। शूद्रों और चांडालों की स्थिति दयनीय थी। समाज में एक अछूत वर्ग स्पष्टतः सामने आ चुका था जिसे सभ्य जीवन जीने की परिधि से बाहर रखा जाता था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि गुप्त काल से ही समाज में निम्न वर्गों की स्थिति में जो गिरावट आरंभ हुई थी उसी का यह परिणाम था। या स्मरण यह है कि अंत्यजों के प्रति व्यवहार के संदर्भ में अलबरूनी जो कुछ लिखता है वह गुप्तकालीन चीनी यात्री फायान के वर्णन से पूर्णतः मेल खाता है। इस अछूत वर्ग के लिए वेद सुनना भी अपराध था और वेद का उच्चारण करने पर दंड स्वरूप उसकी जबान काट ली जाती थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये कठोर नियम केवल सिद्धांत रूप में थे और सामान्य व्यवहार में इनका पालन नहीं होता था। इस विचार की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उपजातियों की संख्या इस काल में बढ़ी, इसके कई कारण थे। उनके व्यवसायों के वंशानुगत हो जाने के कारण इनसे संबद्ध लोग उपजातियों के रूप से संगठित होने लगे। कुछ नए संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मूलतः यह उन लिपिकों का वर्ग था जो सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक लेखा जोखा बनाने के काम में व्यस्त थे। धीरे धीरे यह एक उपजाति में संगठित हो गए। इसी काल में ब्राह्मणों में पंचगौड़ की पद्धति विकसित हुई। क्षत्रियों में भी इस काल में कुछ उपजातियों की चर्चा मिलती है। कुछ उपजातियों के बीच भी खान पान और शादी विवाह के संबंध में ऐसे प्रतिबंध प्रचलित हो गए थे जो मूलतः प्रमुख जातियों के मध्य ही प्रचलित रहे थे। इस प्रकार समाज में संकीर्णता की भावना आई और रूढ़िवादिता और अनुदारता के इस वातावरण में असहिष्णुता की भावना बढ़ी और सामाजिक जीवन विश्रृंखलता तथा पृथकता से प्रभावित हुआ। जाति प्रथा की जटिलता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सहभोज और अंतर्विवाह पर प्रतिबंध था। अलबरूनी के अनुसार चारों जातियों के लोग एक ही नगर और एक ही गांव में रहते थे तथा एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अलग अलग जातियों के लोगों का एक साथ बैठकर खाना मना था। अंतर जातीय विवाह में अनुलोम विवाह की स्वीकृति थी, परंतु ब्राह्मण केवल अपनी ही जाति में विवाह करते थे। यदा कदा इसके अपवाद स्वरूप उदाहरण भी मिल जाते हैं। क्षत्रिय और वैश्य इस नियम का बहुत कठोरता के साथ पालन नहीं करते थे। बाल विवाह और बहुपत्नित्व का सामान्य प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति समाज में असंतोषजनक थी। कुछ गिने चुने उदाहरण विदुषी और प्रतिभावान महिलाओं के अवश्य मिलते हैं, जैसे काश्मीर की रानी दिद्दा, परंतु सामान्यतः स्त्रियों को शिक्षा की सुविधा नहीं थी क्योंकि बाल विवाह के कारण इसकी संभावना ही कम रह गई थी। उच्च जातियों में बहुपत्नित्व की प्रथा आम थी, परंतु विधवा विवाह तथा स्त्रियों द्वारा तलाक का प्रचलन नहीं था। विधवाएं या तो सती हो जाती थी या कष्ट और उत्पीड़न भरा जीवन बिताने पर बाध्य रहती थी। पर्दा प्रथा का सामान्य प्रचलन तो नहीं था, लेकिन राजपूतों में स्त्रियां घूंघट के माध्यम से पर पुरुषों से पर्दा करती थी। जौहर की प्रथा का प्रचलन था। सामान्यतः सामंती प्रथा में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट एक विश्वव्यापी विशेषता रही है और भारतीय सामंती युग में भी ऐसा ही हुआ। यह परिस्थिति कुछ अंशों में नारियों की स्थिति में गिरावट की उस प्रक्रिया से भी प्रभावित थी जो गुप्त काल से ही प्रकट होने लगती है। स्त्रियों के प्रति समाज के बदलते हुए दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति कुछ अंशों में तत्कालीन साहित्य और कला में कामुक प्रवृत्तियों इरोटिक फीचर्स की प्रस्तुति के माध्यम से भी होती है। दास प्रथा का भी प्रचलन था। तत्कालीन स्रोतों से 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दासों के मुक्त करने की प्रथा की भी जानकारी मिलती है, लेकिन दासों की सामान्य स्थिति दयनीय थी। इस काल के सामाजिक जीवन की विशेषता इसकी संकीर्णता और जटिलता थी। सामाजिक नियमों में कठोरता आती जा रही थी। नए विचारों का विकास और विदेशों से संपर्क अवरुद्ध होता जा रहा था और कुल मिलाकर समाज अलगाव और विश्रृंखलता दोनों ही का शिकार हो गया था। यह भारतीय समाज का दुर्बल पहलू था और तुर्क शासक वर्ग की भारत में सफलता इन परिस्थितियों में आश्चर्यजनक नहीं थी। अलबरूनी की भारतीय समाज पर टिप्पणी। अलबरूनी ईरानी मूल का व्यक्ति था जिसका जन्म 973 ईस्वी में मध्य एशियाई राज्य ख्वारिज्म में हुआ, जो अब उज्बेकिस्तान गणराज्य में खीवा नगर के नाम से विख्यात है। उसने ख्वारिज्म के शासक के दरबार में ज्योतिष शास्त्री के रूप में 1017 एडी तक काम किया। उसी वर्ष गजनी के सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर विजय प्राप्त कर ली। अलबरूनी युद्धबंदी के रूप में गजनी आया, परंतु सुल्तान महमूद ने उसकी विद्वता को ध्यान रखते हुए उसे मुक्ति प्रदान कर दी। तत्पश्चात अलबरूनी गजनी में रहा। यहीं उसने 1030 ईस्वी के आसपास भारत संबंधी अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद या किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी। 1048 ईस्वी में उसकी मृत्यु गजनी में हो गई। अलबरूनी एक प्रकांड विद्वान था जिसे गणित, विज्ञान, दर्शन, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि जैसे विषयों में गहरी अभिरुचि थी। वह अनेक भाषाएं जानता था, जैसे अरबी, फारसी, यूनानी, इब्रानी आदि। कहा जाता है कि उसने 114 किताबें लिखी, परंतु किताबुल हिंद को सबसे अधिक ख्याति प्राप्त हुई। यह रचना भारतीय समाज और संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान के संबंध में एक बृहत विश्वकोश के समान है। इसमें हिंदू धर्म और दर्शन, सामाजिक संगठन, धार्मिक और सामाजिक विज्ञान, धार्मिक और वैज्ञानिक साहित्य, भूगोल, तिथि क्रमावली एवं पंचांग, खगोल और ज्योतिष विद्या तथा सामाजिक संस्कार, रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसी विदेशी विद्वान द्वारा भारतीय स्रोतों के आधार पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन का इतना विस्तृत और विश्वसनीय प्रयास इसके पूर्व कभी नहीं हुआ। इसीलिए अल बरूनी को प्रथम भारत शास्त्री इंडोलॉजिस्ट भी कहते हैं। भारतीय सामाजिक जीवन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता जाति प्रथा का अल बरूनी सविस्तार वर्णन करता है। चार मुख्य जातियों की स्थिति के साथ वह आठ ऐसे वर्गों का वर्णन करता है जो किसी भी जाति के अंतर्गत नहीं आते थे। ये अंत्यज थे जिन्हें नगरों में निवास करने की अनुमति नहीं थी। समाज में अछूत वर्ग और उसकी दयनीय अवस्था की पुष्टि इस वर्णन से होता है। जाति प्रथा की जटिलता के संबंध में अल बरूनी लिखता है कि जो व्यवसाय ग्रहण करने की अनुमति किसी जाति को न हो उसे ग्रहण करना पाप समझा जाता था। वह यह भी लिखता है कि विभिन्न जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। अल बरूनी के अनुसार समाज में बहुपत्नित्व की प्रथा थी। ब्राह्मण चार, क्षत्रिय तीन, वैश्य दो और शूद्र एक पत्नी रख सकते थे। निम्न जाति की स्त्री का उच्च जाति के पुरुष के साथ अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी, परंतु उच्च जाति की स्त्री का निम्न जाति के पुरुष के साथ प्रतिलोम विवाह वर्जित था। अल बरूनी के अनुसार स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार सीमित था। केवल अविवाहित पुत्री ही पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी हो सकती थी और उसका अंश पुत्र के अंश के 1/4 अंश के बराबर था। विवाह के समय उसे यह अंश दहेज के रूप में मिल जाता था, जिसके बाद उसे पिता की संपत्ति में कुछ अधिकार नहीं होता था। विधवा को मृत पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। अगर वह सती नहीं हो जाती थी तो मृत पति का उत्तराधिकार उसके भरण पोषण का प्रबंध करता था। सामान्यतः स्त्रियों की स्थिति कष्टपूर्ण थी। अल बरूनी हिंदुओं के ऐसे रीति रिवाजों का भी वर्णन करता है जो उसे आश्चर्यजनक लगे। हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए वह इनकी तुलना इस्लाम से करता है और उनके मध्य स्पष्ट अंतर पर टिप्पणी करता है। अल बरूनी इस्लाम की श्रेष्ठता में पूर्ण विश्वास रखता है, परंतु साथ ही साथ वह हिंदू धर्म की उन भिन्नताओं को पूर्वाग्रह बिना उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास भी करता है। उसकी लेखनी की विशेषता यह है कि वह किसी विषय के संबंध में पहले सविस्तार जानकारी प्राप्त करता है, फिर उसे सरल ढंग से पाठकों तक पहुंचाता है। किसी भी विषय पर लिखने के क्रम में वह पहले संक्षिप्त ढंग से विषय का परिचय देता है, फिर उसके संबंध में अपनी जानकारी का विवरण देता है और तब मूल स्रोतों से उद्धरण प्रस्तुत करता है ताकि पाठक स्वतंत्र ढंग से भी निष्कर्ष तक पहुँच सके। वह न कुछ छिपाता है, न अपनी ओर से कुछ बढ़ाता है। उसकी यह ईमानदारी और सत्य के प्रति निष्ठा उसकी लेखनी को विशिष्ट महत्व प्रदान करती है। विगत वर्षों में कुछ विद्वानों ने अल बरूनी के विवरण की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। इनके विचार अनुसार अल बरूनी की जानकारी केवल शास्त्रों में प्रस्तुत विवरण पर ही आधारित है, जिससे वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती। व्यवहारिक जीवन में इन सिद्धांतों का सदैव पालन नहीं होता था। इस आलोचना की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन है। स्वयं अल बरूनी ने अपनी रचना के उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि यह उन पाठकों की सुविधा के लिए है जो हिंदुओं से उनके शास्त्रों में प्रदत्त जानकारी के आधार पर धर्म, दर्शन, समाज आदि के संबंध में तर्क वितर्क के इच्छुक हैं। इस दृष्टिकोण से आज भी अल बरूनी की तहकीकातें हिंद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन का एक मूल्यवान स्रोत है। 10वीं से 11वीं शताब्दी तक भारतीय सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी में यह अत्यंत सहायक है। यही कारण है कि अल बरूनी की रचना का अनुवाद उनके विदेशी और भारतीय भाषाओं में किया जा चुका है।